एस्तेर से मोर्दकै का निवेदन अध्याय 4। जब मोर्दकै को इन सब बातों का पता चला तो उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए, टाट ओढ़ा और अपने सिर पर राख डाली। वो ऊंचे स्वर में विलाप करता हुआ नगर के मुख्य द्वार से होकर राजमहल के प्रवेश द्वार तक आया, क्योंकि टाट पहनकर राजमहल के भीतर आना मना था। प्रत्येक प्रदेश में जहां जहां राजा की आज्ञा और आदेश की घोषणा हुई थी, वहां वहां यहूदियों ने शोक मनाया। उन्होंने उपवास, क्रंदन और विलाप किया। उनमें बहुतों ने टाट ओढ़े, राख पर शयन किया। जब एस्तेर की दासियों और खोजों ने उसे ये बताया तो वो बहुत दुखी हुई। उसने मोर्दकै को पहनने के वस्त्र भेजे जिससे वो टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें पहनना स्वीकार नहीं किया। अब एस्तेर ने हताक नामक एक खोजे को बुलाया जिसे राजा ने उसकी सेवा में नियुक्त किया था। उसने उसे मोर्दकै के पास भेजा जिससे वो पता लगाए कि मोर्दकै ऐसा क्यों कर रहा है। हताक मोर्दकै के पास नगर के चौक गया जो राजद्वार के सामने था। मोर्दकै ने उसे वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था और कि हमान ने यहूदियों का विनाश कर कितना धन राजकीय कोष में जमा कराने का वचन दिया है। उसने उसे उस राजाज्ञा की प्रतिलिपि भी दी जो सूसा नगर में उसके विनाश के लिए प्रसारित की गई थी, और ये कहा कि वो उसे एस्तेर को दिखलाए और उससे अनुरोध करे कि वो राजा के पास जाकर निवेदन और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करे। उसने कहा, अपना बचपन याद रखो जब मैं तुम्हारा पालन पोषण करता था। हामान, जिसका स्थान राजा के बाद दूसरा है, हमारे विरुद्ध बोला और हमारा विनाश चाहता है। एस्तेर राजा से निवेदन करने को उद्यत। हताक ने आकर एस्तेर को वो सब बताया जो मोर्दकै ने कहा था। एस्तेर ने हताक द्वारा मोर्दकै को कहला भेजा, राजा के सब सेवक और राजा के प्रदेशों के सभी निवासी जानते हैं कि जो पुरुष या स्त्री बिना बुलाए राजा के भीतरी प्रांगण में प्रवेश करता है उसके विषय में एक ही कानून है, अर्थात तत्काल उसका वध किया जाए। किंतु यदि राजा अपना स्वर्ण राजदंड उसकी ओर बढ़ाए तो वो जीवित रह सकता है। मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। मोर्दकै ने यह सुनकर एस्तेर के पास ये उत्तर भिजवाया, ये नहीं सोचो कि राजमहल में रहने के कारण तुम सभी यहूदियों की अपेक्षा अपने प्राण बचा सकोगी। यदि इस समय तुम चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे पितृकुल का विनाश होगा। क्या जाने, शायद इस प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको रानी का पद प्राप्त हुआ हो। एस्तेर ने मोर्दकै को उत्तर भिजवाया, जाइए सूसा में रहने वाले सब यहूदियों को एकत्रित कर कहिए कि वे सभी मेरे लिए उपवास करें। वे 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाए पिए। मैं भी अपनी दासियों के साथ इसी प्रकार उपवास करूंगी, फिर मैं आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा के पास जाऊंगी, और यदि मेरे भाग्य में मरना ही बदा होगा तो मर मिटूंगी। मोर्दकै ने जाकर वैसा ही किया जैसा एस्तेर ने उससे कहा था। ईश्वर से मोर्दकै की प्रार्थना। मोर्दकै अपने वस्त्र फाड़कर और टाट ओढ़कर जनता के नेताओं के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ा रहा। उसने कहा, इब्राहीम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है। प्रभु प्रभु सर्वशक्तिमान अधिपति, सब कुछ तेरे अधिकार में है। यदि तू इज़राइल को बचाना चाहे तो तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। तूने आकाश और पृथ्वी बनाई और आकाश के नीचे सब आश्चर्यों को। प्रभु तू विश्व का अधिपति है, तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। प्रभु, तू जानता है कि मैं इज़राइल के कल्याण के लिए हामान के चरणों का तलवा सहर्ष चूमने को तैयार हूं, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं ईश्वर की प्रतिष्ठा की अपेक्षा मनुष्य की प्रतिष्ठा को अधिक महत्व नहीं देना चाहता था। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तुझको छोड़ किसी अन्य को दंडवत नहीं करूंगा। मैंने न तो अभिमान से और न नाम कमाने की इच्छा से ऐसा किया। प्रभु प्रकट होकर हमारी सहायता कर। अधिपति इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, अब अपनी प्रजा की रक्षा कर, क्योंकि हमारे शत्रु हमको मिटाना और तेरी विरासत का विनाश करना चाहते हैं। उस प्रजा का तिरस्कार न कर जिसका तूने मिस्र से उद्धार किया है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, अपनी विरासत पर दया कर, हमारा शोक आनंद में बदलने की कृपा कर, जिससे हम जीते रहें और तेरे नाम के गीत गा सकें। जो मुख तेरी स्तुति करते हैं उनका विनाश न होने दे। सभी इज़राइली भी सारी शक्ति से प्रभु की दुहाई देते थे, क्योंकि वे अपनी मृत्यु निकट समझते थे। ईश्वर से एस्तेर की प्रार्थना। रानी एस्तेर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतारकर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। वो अपनी दासियों के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ी रही। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है, मुझे एकाकिनी की सहायता कर। प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं, मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूं। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से ये पता चला कि तूने जल प्रलय में नूह की रक्षा की। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से ये पता चला कि जब इब्राहिम 318 वीरों के साथ युद्ध करने निकले तो तूने 9 राजाओं को उनके हाथ दिया। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से ये पता चला कि तूने योना को मच्छ के पेट से निकाला। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से ये पता चला कि तूने हनन्या, अजर्या और मिशाएल को आग की भट्टी से निकाला। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से ये पता चला कि तूने दानियेल को सिंहों के खड्ड से निकाला। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से ये पता चला कि जब यहूदियों के राजा हिजकिया मरने पर थे और अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो तूने उन पर दया की और उन्हें 15 वर्ष और जीवित रहने दिया। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से ये पता चला कि जब अन्ना ने सारे हृदय से प्रार्थना की तो तूने उसे पुत्र प्रदान किया। प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से ये पता चला कि जिन लोगों पर तू प्रसन्न है, तू प्रभु उन सबों की सदा रक्षा करता है। प्रभु मेरे ईश्वर, मुझे एकाकिनी की सहायता कर, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। प्रभु तू जानता है कि तेरी इस दासी को बेखतना लोगों के प्रसंग से घृणा है। ईश्वर तू जानता है कि मैंने विभत्स मेज पर से नहीं खाया और उनकी गोष्ठियों में मदिरा नहीं पी। प्रभु तू जानता है कि जिस दिन से मैं रानी बनी उस दिन से तू ही मेरा आनंद रहा। ईश्वर तू जानता है कि मैं जो राजसी वस्त्र पहनती हूं उससे रजस्वला के कपड़े की तरह घृणा करती हूं। मैंने उसे शुभ दिन में नहीं पहना। अब मुझे अनाथ की सहायता कर, सिंह के सामने मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख, मुझे उसकी कृपा दृष्टि प्रदान कर, उसका हृदय बदल और उसमें हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारे शत्रु और उसके समर्थकों का विनाश हो। हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा, हमारा शोक आनंद में और हमारी विपत्ति कल्याण में बदलने की कृपा कर। ईश्वर, अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी शक्ति प्रदर्शित कर, प्रभु प्रकट होकर हमारी सहायता कर।